Hare Krishna, we are so fortunate to have lecture of His Grace Atul Krishna Puji on Damodar Leela, first day of Damodar Mass.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है आज शरद पूर्णिमा के इस अवसर पर। हम बड़े आभारी हैं आप सबके कि आपके अंदर भगवान ने अपनी कथा श्रवण, अपने उत्सवों को मनाने की रुचि प्रदान की है। इसीलिए आप रविवार, सोमवार, मंगलवार श्रवण कर रहे हैं। वैसे ये भाग्य है कि हमें कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा हर रोज श्रवण करने मिल रही है। आप में से कई लोग सुबह भी आ रहे हैं, सुबह भी भागवतम पर चर्चा हो रही है, तो इसलिए बड़े आभारी हैं। बड़ी प्रसन्नता है आप सबको देखकर कि आप श्रवण में इतनी रुचि उत्पन्न कर रहे हैं। भागवत के प्रायः सभी स्कंदों में इस एक बात को बहुत महत्व दिया गया है, भगवान के नाम का श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण, और यही सच्चा आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ ये नहीं है कि हम शरीर से परे चले जाएं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ ये नहीं है कि हम इस भौतिक जगत में, चाहे नीचे के लोग हों या ऊंचे के लोग हों, उनमें हम भ्रमण कर सकें। साक्षात कि हम कोई बहुत चमत्कारी कार्य कर सकें, अपने आप को हवा में उड़ा सकें, एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकें, बहुत छोटे हो सकें, बहुत बड़े हो सकें। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपनी स्थिति को जानते हुए भगवान की सेवा में लगना। ये सच्चा आत्म साक्षात्कार है। आत्म अर्थात स्वयं, साक्षात्कार अर्थात जानना, स्वयं को जानना, हम कौन हैं और हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, यही साक्षात्कार की पूर्णता है। भगवान की सेवा में लग जाना, बस। जितने भी योगी, जितने भी तपस्वी, जितने भी ज्ञानी भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या या ज्ञान या योग विद्या का पालन करते हैं, उनकी पूर्णता इसी में है कि वो भगवान की सेवा करें। हो सकता है हम लोग कोई बहुत साधारण सेवा करते हों, लेकिन एक साधारण सेवा करने वाला भक्त भी अपने पूर्व जन्मों में बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं, योग विद्या का पालन कर चुका है, और तभी उसे अवसर मिला है भगवान की सेवा का। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं कि भगवान की सेवा, भगवान को जानना, ये बहुत बहुत जन्मों के अंत में होता है, और कोई बहुत दुर्लभ विरला महात्मा ही भगवान की शरण आ पाता है, भगवान की सेवा कर पाता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार या मुक्ति का अर्थ है भगवान में लीन हो जाना, भगवान के धाम चले जाना। हाँ, वो तो एक साक्षात्कार या एक प्रकार की मुक्ति है, लेकिन सच्चा साक्षात्कार, सच्चा प्रेम भगवान से वो है जब हम उनकी सेवा करते हैं। छोटी से छोटी सेवा ये भगवान को प्रसन्न करती है। बड़े बड़े श्लोक शास्त्रों के भगवान को प्रसन्न नहीं करते, भगवान को प्रसन्न करता है सच्ची सेवा और हृदय से किया हुआ सेवा अच्छे भाव में। सच्चा सेवा भाव, सच्ची सेवा ये भगवान को आकर्षित करती है, और आज का दिवस इस सेवा के सच्चे भाव और समर्पित सेवा का दिवस है। आज के दिवस पर भगवान ने यही दिखलाया कि कैसे भगवान बहुत बड़े बड़े श्लोकों से प्रसन्न नहीं होते, भगवान बड़ी योग विद्या से बड़ी तपस्या से प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं शुद्ध हृदय से की हुई एक छोटी सी सेवा से, और आज के दिवस पर यही भगवान हम लोगों को सब सिखलाना चाहते हैं। शरद पूर्णिमा का दिवस, ये वो दिवस था जब भगवान ने अपनी सर्वोच्च लीला प्रकट की, ये वो दिवस था जब गोपियों ने भगवान को पूर्ण समर्पण किया, ये वो दिवस था जब भगवान के सामने गोपियों ने आकर भक्ति की चरम अवस्था को प्रकट किया, ये वो दिवस था जब भगवान ने गोपियों को अपने उपदेशों के द्वारा उनसे प्रेम करने का मार्ग बतलाया। बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है ये शरद पूर्णिमा का दिवस। तो भगवान इस सेवा से प्रसन्न होते हैं। आज का दिवस कार्तिक महीने का पहला दिवस भी है, आज से कार्तिक महीने प्रारंभ होता है, और कार्तिक महीना इसका गुणगान पद्म पुराण, स्कंद पुराण, हरिभक्ति विलास आदि ग्रंथों में बड़े विस्तार से हुआ है। हरिभक्ति विलास में अलग अलग पुराणों से संकलन किया गया है कार्तिक महीने की महिमा का, कैसे व्रत का पालन करना चाहिए, व्रत क्या है, ये महीना क्या है, भक्ति में प्रगति के लिए पूर्व काल में चातुर्मास का पालन किया जाता था। आज भी जो सन्यासी हैं, वैरागी हैं, वे लोग आज भी इस चतुर्मास का पालन करते हैं। पूर्व काल में ऐसा होता था कि चतुर्मास ये वर्षा का समय होता था, और वर्षा के समय में सन्यासी कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए एक स्थान पर बैठकर भगवान की पूजा आराधना किया करते थे। आज भी कई सन्यासी उस नियम का पालन करते हैं। और जब ये ऋतु आती थी शरद ऋतु, सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में शरद ऋतु का वर्णन किया। दिखने में तो ये वर्णन बड़ा साधारण लगता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब शरद ऋतु आती है तो जो बादल वर्षा के समय घने काले थे, अब वो एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। नदियां जिनमें मटमैला पानी था, वर्षा के समय नदियों का जल मटमैला हो जाता है, मिट्टी से भरा होता है, अब शरद ऋतु में एकदम साफ हो गया है, कमल खिल गए हैं। ये वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, लेकिन आचार्य इसको समझाते हैं कि जब तक उन बादलों ने अपने में समेटे रखा पानी को, वो काले रहे, घने रहे, लेकिन जब उन्होंने दे दिया दूसरों को उस जल को, तो वो स्वच्छ हो गए, चमकने लगे। आचार्य समझाते हैं कि जब तक हम अपने संग्रह के लिए इस जीवन में प्रयासरत रहते हैं, तब तक हमारा जीवन भी उस घने काले बादल की तरह है, स्वच्छ नहीं है, दूषण से परिपूर्ण है। लेकिन जब हम उसको दे देते हैं, दूसरों के लिए अपना जीवन देते हैं, दूसरों के लिए अपना समय, अपना धन, विशेषतः भगवान की सेवा के लिए देते हैं, भगवान की सेवा में व्यक्ति अपने शरीर को, अपने समय को, अपने धन को, अपनी स्थिति को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, सबको लगा सकता भगवान की सेवा में। और जब ऐसा किया जाता है तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कार्तिक महीने की महत्व भी है और शरद पूर्णिमा का उत्सव भी है। हरि भक्ति विलास में श्रीपद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, अलग अलग पुराणों से वो बताते हुए कि कार्तिक महीना है जो चतुर्मास का अंतिम महीना, चार महीने होते थे तो ये अंतिम महीना जिसको दामोदर महीना भी कहते हैं, दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात कमर या पेट। तो दामोदर मतलब वो भगवान का रूप जिनके कमर में रस्सी बंधी हुई है, यशोदा ने बांध दिया था श्री कृष्ण को, तो इसीलिए दामोदर। तो ये महीना, इस महीने में ये लीला हुई थी तो इसलिए इस महीने का नाम हुआ दामोदर। बहुत सुंदर ये लीला है, भगवान को कैसे बांधा, कृष्ण को कौन बांध सकता, लेकिन यशोदा ने बांध दिया पहली बार। तो दामोदर महीने में ऐसा वर्णन किया गया है पुराणों में कि तपस्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए जितनी हो सके, भगवान के नाम का जप पढ़ करना चाहिए, भागवत सुननी चाहिए, भगवत गीता सुननी चाहिए, जितना हो सके मंदिर आना चाहिए, भगवान को दीप अर्पण करने चाहिए, दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए, विशेषतः वृंदावन में जाकर तपस्या आदि करनी चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे महीने तपस्या ना भी कर पाए, अंतिम पांच दिवस जिसे भीष्म पंचक कहते हैं, अंतिम पांच दिवस अगर वो तपस्या कर लेता है तो पूरे महीने तपस्या करने का लाभ मिलता। वृंदावन में कई लोग इन आखिरी पांच दिवसों में बहुत कड़ी तपस्या करते हैं। अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एकादशी के दिन से हजारों लोग वृंदावन, मथुरा और गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं बिना रुके। 3 दिन तक ये परिक्रमा चलती है और लोग प्रारंभ करते हैं वृंदावन, मथुरा और फिर गोवर्धन करके फिर वापस आते हैं, एक ही साथ बिना रुके दिन भर चलते हैं। रात में जहां जगह मिलती है वहीं लेट जाते हैं सड़क पर, फिर अगले दिन वहीं से प्रारंभ कर देते हैं। हजारों लोग कार्तिक के आखिरी महीने, आखिरी दिनों में। तो कार्तिक महीने का महत्व यह है कि ये श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय महीना है, शरद ऋतु का महीना है, इसीलिए श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है। और क्योंकि श्रीमती राधा रानी को ये प्रिय है इसीलिए जो भक्त इसमें तपस्या करता है उसको श्रीमती राधा रानी की कृपा मिलती है। और अगर श्रीमती राधा रानी की कृपा मिल जाए तो फिर कृष्ण को प्राप्त करना बड़ा सरल हो जाता है। एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, राधा भजन यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। अगर आपने कृष्ण की भक्ति की और श्रीमती राधा रानी के भजन भक्ति में आपकी रुचि नहीं हुई तो सारा कृष्ण का भजन अकारण गेला, कोई लाभ नहीं है। क्योंकि कृपा तब मिलती है जब श्रीमती राधा रानी की कृपा आती है। तो इसीलिए कार्तिक के महीने में कुछ चीजें करनी अनिवार्य है, करनी चाहिए। वैसे कई स्थान पर कहा गया है कि अगर जो इस व्रत का पालन नहीं करता, इसको व्रत कहा जाता है, ऊर्ज व्रत। ऊर्ज व्रत अर्थात ऐसा व्रत जो श्रीमती राधा रानी, ऊर्जा ये शक्ति को कहते हैं और श्रीमती राधा रानी भगवान की शक्ति है, इसीलिए उनके नाम पर यह व्रत है, ऊर्ज व्रत। तो व्रत ऐसा है कि व्यक्ति व्रत ले, वर्णन किया गया पुराणों से, अलग अलग पुराणों में, कि सुबह जल्दी उठने का प्रण ब्रह्म मुहूर्त में, कम से कम इसे एक महीने में, क्योंकि बाकी का जो समय होता है वो अलग अलग गुणों में बटा होता है। सुबह का समय सत्व गुण में होता है, दोपहर का समय रजोगुण में होता है, शाम का समय तमोगुण में, रात्रि और शाम। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त है ये भक्ति के लिए बहुत अनुकूल समय है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए इस अगले एक महीने में कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले। तो सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा, प्रायः 4:30 बजे, करीब 4-4:30 बजे उठें, स्नान करें और भगवान के नाम का जप करें। प्रभुपाद समझाते थे इससे बाहरी और आंतरिक दोनों शुद्धिकरण होता है। तो इसलिए भगवान के नाम का जप जितना बढ़ा सकें वो अच्छा है। तो कार्तिक महीने में ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं पुराणों में। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा एक चूहे की है, जो बारंबार इस कार्तिक के महात्म्य में सुनाई जाती है, कि एक चूहा भगवान के अल्टर में अंदर चला गया, दीप जल रहा था, घी की सुगंध आई उसको, तो उसने सोचा थोड़ा खा लूं। तो जैसे ही गया खाने लगा तो वो जल रहा था दिया, तो उसका शरीर जल गया। तो जब शरीर जला तो वो जोर जोर से उछलने लगा, कूदने लगा, जल रहा था। और फिर उसके उतने उछलने से क्या हुआ था कि वो दिया बुझने वाला था, लेकिन जब इसने जाकर छुआ और खाने का प्रयास किया तो वो दिया और आगे हो गया, जल गया अच्छी तरह से। और जब इसको जल गया ये शरीर, तो ये कूदने लगा और फिर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान ने क्या स्वीकार किया? भगवान ने सोचा कि इस चूहे ने मरने से पहले मेरी सेवा कर दी। क्या सेवा की? दो सेवाएं। पहली सेवा, मेरी ज्योत बुझ रही थी, दीपक बुझ रहा था, इसने जला दिया। कार्तिक के महीने में किया है, दीपदान हो गया इसका, इसने जला दिया। और दूसरा, जब वो उछल रहा था तो भगवान ने कहा मरने से पहले इसने कीर्तन कर लिया, जोर जोर से कूद कूद कर कीर्तन कर लिया, तो ये सेवा स्वीकार कर ली भगवान ने और इसीलिए उसको मुक्त कर दिया। तो देखिए साधारण सी चीज, ये कार्तिक का महत्व है। कार्तिक में अगर कोई इतनी छोटी सेवा भी कर देता है, हमारे इस्कॉन के सभी मंदिरों में इस समय भक्त बहुत सेवा करते हैं, कोई दीप ला के देते हैं, कोई रुई की बाती ला कर देते हैं, कोई घी ला कर देते हैं, कि बस एक महीने में भगवान ने जैसे चूहे का उद्धार कर दिया, केवल उसने तो दीप जरा सा जला दिया था, अगर हम सही में दीप जलाएंगे, भक्ति भाव से जलाएंगे, तो निश्चित है कि कृष्ण कृपा करेंगे। तो ऐसे कार्तिक के महीने के महात्म्य में और भी कई कथाएं हैं कि कैसे थोड़ी सी सेवा करने से इस महीने में हजारों गुना सेवा का लाभ मिलता है, और वही सेवा अगर वृंदावन में जाकर करें तो उससे भी हजारों गुना ज्यादा लाभ, और वही सेवा अगर अंतिम 5 दिनों में करें तो उससे भी ज्यादा लाभ वृंदावन में। तो इसलिए कार्तिक में प्रयास करना है कि सुबह उठें, भगवान के नाम का जप ज्यादा करें, और जैसे हम कल बता रहे थे कि हर रोज दामोदर अष्टकम का पाठ करें, दीप दान निश्चित करें, इस महीने में बड़ा आवश्यक है। सारी दुनिया में इस्कॉन के जितने मंदिर हैं, इस्कॉन के ही नहीं, भगवान के जितने मंदिर हैं, उन सब मंदिरों में, विशेष करके वृंदावन में, इस पूरे महीने में दीप अर्पण किए जाते हैं भगवान को। तो दीप अर्पण करना ये शास्त्रों का नियम है, भगवान को करना चाहिए, विशेषता इस महीने में। तो इसलिए दीप अर्पण करें, दामोदर अष्टकम का पाठ करें, भगवद गीता भागवत को सुने, जितना हो सके भक्ति के नियमों का पालन करें, भक्ति को बढ़ाएं इस महीने में, भक्ति प्रदान करने वाला महीना है। और साथ ही साथ पद्म पुराण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जितने गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ भक्त हैं, उन्हें विशेषतः इस महीने में दान करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। वैसे भी गृहस्थों के लिए दान की व्यवस्था की गई है शास्त्रों में, इसका कारण कि धन कमाते कमाते बड़ी आसक्ति हो जाती है धन से, तो जब वो दान देते हैं धन का, तो फिर वो आसक्ति कम हो जाती है। दूसरा, उनको लाभ मिलता है अगर वो भगवान की सेवा में धन को लगाते हैं। तीसरा, उनका कर्तव्य है, क्योंकि बाकी अन्य जो आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ, वे तो कोई धन नहीं कमाते हैं, क्योंकि अगर वे धन कमाने लगे तो समाज में दूषण हो जाएगा। अगर ब्रह्मचारी सन्यासी अपने सन्यास धर्म को छोड़कर, ब्रह्मचारी धर्म को छोड़कर पैसा कमाने लगे तो फिर सारे समाज में व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो इसलिए गृहस्थों का कर्तव्य है कि वो धन को दें, विशेषतः इस महीने में बहुत दान किया जाता है। आप अगर अभी वृंदावन जाएंगे और अगर वहां परिक्रमा करेंगे तो लोग खाने की चीजें पता नहीं क्या क्या रास्ते में आकर देते हैं, ले लीजिए ले लीजिए, हमें ध्यान है, हम पिछली बार परिक्रमा कर रहे थे, हमें कई लोगों को मना करना पड़ा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हमें परिक्रमा करने दी। लोग देना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने अभी इसमें कुछ दान दे दिया तो थोड़ा लाभ मिल जाएगा, और फिर अगर भक्तों को देख लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस महीने में बहुत सा दान करते हैं, भक्तों को कपड़ा देना, भोजन कराना, अपने घर पर बुलाकर भगवान के भक्तों को भोजन कराना, ये सब इस महीने में किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। उद्देश्य एक ही है कि भगवान इससे प्रसन्न हो जाए। तो ऐसे इस कार्तिक महीने में हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रयास करें सुबह जल्दी उठें। वैसे आज के दिवस पर हम लोग एक विशेष व्यवस्था कर रहे हैं आपके लिए ताकि कल आप सुबह जल्दी उठ सके। जानना चाहते हैं क्या व्यवस्था है? आज शरद पूर्णिमा का दिवस है, भगवान रास लीला करते हैं आज के दिवस पर, और कई मंदिरों में, विशेष करके वृंदावन में लेकिन अन्य कई मंदिरों में भी आज के दिवस पर खीर का भरा हुआ मटका या पात्र ये बाहर रख दिया जाता है, रात भर, पूरी रात्रि वो बाहर रहता है। हाँ, उसको संभाला जाता है ताकि उसको ऊपर रखते हैं इसीलिए नीचे नहीं, तो बाहर रखा रहता है ताकि उस पर चंद्रमा की किरणें पड़ सकें, और जब भगवान रासलीला करके थक जाएं तो उस खीर को खा लें, और रात भर ये खीर बाहर रहती है और सुबह उसको प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटा जाता है। तो आज तक शायद यहाँ कारवार में हमने ये प्रारंभ नहीं किया था, या कभी किया होगा हमें ध्यान नहीं, लेकिन इस बार से प्रारंभ कर रहे हैं हर शरद पूर्णिमा के दिवस पर। तो आज विशेष खीर भगवान के लिए बनाई जाएगी और फिर उसको बाहर रखेंगे, और कल जो भी भक्त भगवान के दर्शन के लिए आएंगे मंगल आरती में उनको ये खीर दी जाएगी। तो ये विशेष व्यवस्था हम लोगों की। हम सोच रहे थे कि मंगल आरती कहें या दर्शन आरती कहें, थोड़ा दुविधा थी मन में, क्योंकि हम जानते हैं आप सब उस विशेष खीर कोई बहुत विशेष होती है, भगवान के लिए शरद पूर्णिमा पर रखी गई है, चंद्रमा की किरणें पड़कर इसको पोषण देती हैं, जितनी भी वनस्पति हैं उनको पोषण चंद्रमा की किरणें देती हैं, तो चंद्रमा की किरणें इस पर पड़ेंगी और स्वयं भगवान रात्रि के समय रासलीला करके थक कर इसको खाएंगे। तो ऐसा प्रसाद खाने के लिए अगर आप लोग कल सुबह आए तो हमने सोचा थोड़ा कंसेशन दे देते हैं, सब लोग तो मंगल आरती नहीं आ पाएंगे, तो इसीलिए अगर कोई दर्शन आरती तक भी आ गए 7:30 बजे तक, तो इस बार केवल कंसेशन, अगली बार नहीं देंगे। तो अगर कोई 7:30 बजे तक, 7:30 भगवान के दर्शन होते हैं, गुरु पूजा होती है, तो 7:30 से 8 का समय यहाँ बिताएंगे कल, तो उनको वो विशेष खीर दी। वैसे तो खीर हम लोग रोज ही देते हैं लेकिन ये विशेष खीर होगी क्योंकि आज रात भर बाहर रहेगी शरद पूर्णिमा की रात्रि पर। तो आशा करते हैं आप में से कई लोग सुबह आएंगे, मंगल आरती भी आइए, बहुत अच्छी बात है, 5 बजे यहाँ होती है, थोड़ा देर से हम लोग करते हैं, हर मंदिर में 4:30 बजे होती है, ये कारवार है इसीलिए 5 बजे यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आप 7:30 तक भी आएंगे तो वो खीर थोड़ी सी बचा कर रखेंगे आपके लिए, बहुत अमृत होता है उसमें, आप लोग जब कल खाएंगे तो आपको पता चलेगा सही में भगवान उसको स्वाद लेते हैं आकर रात्रि के समय। तो शरद ऋतु या शरद पूर्णिमा ये वो दिवस है, जैसे हम बतला रहे थे कि भगवान ने भक्ति के गूहिए सिद्धांतों को प्रकट किया, सेवा भाव को गोपियों ने प्रकट किया, समर्पण को प्रकट किया, श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई इस रात्रि में और सारी गोपियां उनके पास आ गई, अपने अपने घरों को छोड़कर जैसे थी वैसे, घर में जैसे थे वैसे ही आ गए, जो काम कर रहे थे उसको छोड़कर आ गए। और जब कृष्ण के पास आए तो कृष्ण ने कहा आप इतनी रात में क्यों आई हैं यहां पर, आपको चले जाना चाहिए, वापस चले जाओ, ये अच्छा नहीं है, आप जैसे इतने अच्छे घर के स्त्रियों को रात्रि के समय ऐसे बाहर निकलना, क्या सोचेंगे आपके पति, क्या सोचेंगे आपके घर वाले आपको वापस जाना चाहिए। गोपियां वापस जाने के लिए तो नहीं आई थी, तो गोपियों ने भगवान से फिर संवाद हुआ। उन्होंने कहा हमने तो पूर्ण समर्पण किया है आपको, और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, ये तो अकृतज्ञता है। आपको कृतज्ञ होना चाहिए कि हम आपको समर्पण कर रहे हैं और आप हमें वापस जाने को कह रहे हैं। उस समय भगवान ने बहुत सुंदर बात की। भगवान ने कहा कि आप मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन भक्ति प्रेम मेरे साथ रहने से नहीं बढ़ता। श्रवणा दर्शना ध्यानात मई भावोन कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेणा। सन्निकर्षेणा मेरे साथ रहने से भक्ति नहीं बढ़ती, प्रेम नहीं बढ़ता। किससे बढ़ता है? श्रवणात्, श्रवण कीजिए। दर्शनात्, मेरे विग्रह का दर्शन कीजिए। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, और फिर मई भावोनुकीर्तनात्, भावपूर्ण कीर्तन कीजिए। ये भगवान कहते हैं। तो ऐसे कीर्तन से, ऐसे श्रवण से, ऐसे स्मरण से, ऐसे दर्शन से भगवान का प्रेम बढ़ता। तो खैर, गोपियां तो मानने वाली नहीं थी, और फिर भगवान ने रासलीला की। बहुत सुंदर वर्णन है रासलीला का। भगवान ने जो रासलीला की, ये अपनी ही शक्ति के साथ की। इसको समझना चाहिए। लोग कभी कभी रासलीला को गलत समझते हैं। कभी लोग आरोप लगाते हैं कृष्ण पर या कृष्ण के भक्तों पर कि देखो आपके भगवान कैसे हैं। लेकिन हमें इसको मूल को समझना चाहिए। रासलीला क्या है? शक्तिमान अपनी शक्तियों के साथ आनंद लें। इसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे हम कई बार ये उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई एक बहुत दक्ष क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो क्रिकेट खेलता, तो क्रिकेट खेलना ये उसकी शक्ति का प्रदर्शन है। उसके अंदर जो शक्ति है उसका प्रदर्शन करता है क्रिकेट खेलकर, और उसमें आनंद लेता। क्या हम उसको निंदा करते हैं कि कैसे ही अपनी शक्ति के साथ ये आनंद ले रहा है, बड़ा गलत कर रहा है? नहीं, हम लोग कहते कुछ गलत नहीं है, उसके अंदर शक्ति है, वो शक्ति का प्रदर्शन कर रहा। इसी तरह भगवान की शक्ति है जीव, और भगवान अपनी ही शक्ति के द्वारा, शक्ति के साथ जब लीला करते हैं उसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि ये जो गोपियां हैं, ये हैं कौन? भगवान शक्तिमान हैं और ये उनकी शक्ति है, और उनका उद्देश्य, उनका, इनकी इच्छा भगवान की सेवा करनी है। इसलिए भगवान केवल उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसलिए आचार्यों ने समझाया है कि जब तक हम भागवतम के पहले स्कंद से लेकर नवे स्कंद को ना पढ़ें, तब तक दसवें स्कंद में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसी कथाओं को सुनेंगे, ऐसी लीलाओं को सुनेंगे, मन भ्रमित हो जाएगा। हम कहेंगे नहीं, ये गलत है। लेकिन जब हम जानेंगे कृष्ण कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उन वो इस जगत के परे हैं, यहां केवल लीला दर्शाने के लिए आए हैं, तब हम जान पाएंगे। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, आप कैसे इन दोनों की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की? ये आज से नहीं, कई सालों से ये आरोप चला रहा। बलदेव विद्याभूषण, जो हमारे संप्रदाय के बड़े शक्तिशाली आचार्य रहे, उस समय, आज से करीब 500 वर्ष पूर्व, उस समय उनसे प्रश्न पूछा गया था, और उन्होंने वेदांत के अनुसार उस समय सबको उत्तर दिया। किनको? जो बड़े बड़े पंडित थे, शास्त्रों के पंडित, जो आरोप लगा रहे थे राजा की सभा में, सबके सामने उन पंडितों को उन्होंने उत्तर दिया कि शास्त्र कहता है, वेदांत कहता है, राधा और कृष्ण की भक्ति करना कोई गलत नहीं। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि राधा और कृष्ण का कभी विवाह नहीं हुआ, उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन है कि उनका विवाह हुआ था। केवल लीला को रस बढ़ाने के लिए बाकी क्रियाएं की गई, तो ऐसा नहीं है कि उनका विवाह नहीं हुआ। और अगर मान लीजिए विवाह नहीं हुआ, ये इस तरह है कि जैसे एक पति पत्नी है किसी नाटक में कार्य करने के लिए आते हैं, नाटक में उनका विवाह नहीं होता, तो क्या उनका संबंध टूट जाता है? एक नाटक, एक घंटे के लिए वो नाटक करते हैं जिसमें वो पति पत्नी नहीं है, लेकिन जैसे ही स्टेज से नीचे उतरेंगे वो तो पति पत्नी है ही, किसी को कहना नहीं पड़ेगा, कुछ उन्हें करना नहीं पड़ेगा ये बतलाने के लिए कि अरे ये मेरी पत्नी है। नाटक में नाटक में विवाह नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच्चाई में तो विवाह हुआ। इसी तरह श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में नित्य संगिनी है उनकी, श्रीमती राधा रानी। ये तो केवल लीला मात्र, एक नाटक करने के लिए जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो फिर विवाह नहीं करते हैं, बाहरी दृष्टि से विवाह वैसे हुआ। तो फिर कौन कह सकता है, क्या हम कह सकते हैं कि नहीं शाश्वत रूप से वो तो उनकी संगिनी है? ये थोड़ा बहुत नाटक लीला मात्र में इसको भेद हो जाता है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम के पहले 9 स्कंद पढ़ लेने चाहिए, उससे हम श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की स्थिति को समझ जाएंगे और तब लीलाओं में कोई दोष दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे शरद ऋतु की दिवस पर बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई, श्री कृष्ण ने रास लीला की। वैसे श्री कृष्ण बहुत सारी लीला करते रहते थे श्रीमती राधा रानी के साथ और अन्य लीलाएं, लेकिन ये जो मूल आज के दिवस पर ये जो लीला हुई, ये गोपियों के सर्वोच्च भाव को प्रकट करने के लिए, सेवा का भाव। गोपियों का सबसे श्रेष्ठ भाव क्या है? सेवा। कृष्ण की सेवा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, पूर्ण समर्पण कर दिया। ये गोपियों का भाव दिखलाने के लिए शरद ऋतु की लीला हुई, शरद पूर्णिमा की। भगवान दिखा रहे हैं कि अगर सेवा करनी है तो एक गोपियों के भाव में। और भगवान ने क्या कहा गोपियों से, जब गोपियों से संवाद हो गया भगवान ने कहा आप चले जाओ इत्यादि इत्यादि, लेकिन जब भगवान ने गोपियों की सेवाओं को देखा तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं गोपियों से? वो कहते हैं कि आपने जो सेवा की है उसके बदले में मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। ये कौन कह रहे हैं? सारे ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं भगवान, जिनकी इच्छा मात्र से जगत प्रकट होता है, वो गोपियों को कहते हैं कुछ देने के लिए नहीं है, मोबाइल भी नहीं है उनके पास देने के लिए। आप सबसे प्रार्थना करते हैं, इतना जब कृष्ण की लीला चल रही हो, ये बीच में इतना भयंकर म्यूजिक का इस्तेमाल मत किया कीजिए। मंदिर में अंदर आने से पहले अपने मोबाइल्स बंद किया कीजिए या साइलेंट पे रखा कीजिए। तो कृष्ण कहते हैं गोपियों से, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। क्यों ऐसा कहा? क्या कुछ नहीं? धन दे सकते थे, ऐश्वर्य दे सकते थे, सुंदरता बल सब दे सकते हैं कृष्ण, सब कुछ उनसे आता। लेकिन कृष्ण कहते नहीं, जो सेवा आपने की है उसके बदले में मैं कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि सेवा इतनी बड़ी है, आपने इतने समर्पित भाव से मेरी सेवा की है कि मैं कुछ नहीं दे सकता। इसीलिए आपकी सेवा ही आपकी सेवा का मूल्य है। बस, अर्थात जब आपने इतनी अच्छी सेवा की है तो और सेवा करते रहिए, बस यही मूल्य है, श्री कृष्ण कहते हैं। तो देखिए किस तरह से श्री कृष्ण कृतज्ञ हो गए गोपियों के सेवा के लिए। इसलिए आज का दिवस हमें सिखलाता है कि कैसे हमें सेवा करनी चाहिए भगवान की, सदैव किसी भी अवस्था में। जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपियां सब कुछ छोड़कर आ गईं, जो जहां थी वैसे ही आ गईं, सब कुछ छोड़कर। तो ऐसे इस सेवा भाव को आज के दिवस पर प्रकट किया जाता है, शरद पूर्णिमा का दिवस, भगवान की सर्वोच्च लीला इस जगत में आज के दिवस पर प्रकट हुई। भगवान वैसे बहुत छोटे थे, 10 वर्ष के थे केवल, छोटे से बालक, जब ये लीला उन्होंने की, गोपियों को प्रसन्न किया, संतुष्टि प्रदान की। और ये वो लीला है जो बड़े बड़े वैरागी, सुखदेव गोस्वामी जैसे वैरागी जिनको इस जगत से कुछ लेना देना नहीं, ये बड़े आनंद लेकर इस लीला को कहते हैं, क्योंकि ये दिव्य लीला है। तो इसलिए आज के दिवस पर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से प्रण लेना चाहिए मन में कि हम जीवन भर भगवान की सेवा कर सके और मृत्यु के समय भी सेवा करते हुए जाएं। प्रभु बात कहा करते थे कि मेरी इच्छा है कि मैं अर्जुन की तरह युद्ध करते हुए मारा जाऊं, मारा जाऊं अर्थात युद्ध करते हुए जीवन देह त्यागूं। दूसरे शब्दों में प्रभु बात कह रहे थे कि मैं सेवा करते हुए जाऊं। तो हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए, वैसे तो हम सबको जाना है, लेकिन जिस दिन जाएं भगवान की सेवा करते हुए जाएं। इसीलिए आज के दिवस पर सेवा बहुत प्रमुख है और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम लोग इस भाव को, गोपियों के भाव को समझ सकें। गोपियां जो भी करती हैं कृष्ण के लिए, जैसे वो बड़ी प्रसिद्ध कथा सुनाई जाती है कि जब श्री कृष्ण को सरदर्द हो गया तो गोपियों ने सोचा, गोपियों से पूछने आए नारद मुनि, नारद मुनि को भगवान ने कहा, नारद ने कहा कि अरे आपको सरदर्द हो गया, क्या उपाय है? तो उनका उपाय बड़ा सरल है, जाओ मेरे भक्तों के चरणों की धूली ले आओ, वो मैं अपने सर पर लगाऊंगा, मेरा सरदर्द दूर हो जाएगा। तो नारद ने कहा बस अभी चला जाता हूं। तो नारद चले गए, आए द्वारका में, द्वारका की रानियों को पूछा कि अरे कृष्ण का सरदर्द है, आप अपने चरणों की थोड़ी धूल दे दीजिए, कृष्ण के सर पर लगाऊंगा। रानियों ने कहा नारद दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, हमारे चरणों की धूल हमारे स्वामी श्री कृष्ण के मस्तक पर लगेगी, अरे हम नरक जाएंगे, हम नहीं कर सकते। कृष्ण चले आए गोपियों के पास, गोपियों से कहा कृष्ण का सरदर्द है और अगर तुम्हारे चरणों की धूल मिल जाए तो उनका सरदर्द दूर हो जाएगा। गोपियों ने कहा जितनी चाहिए ले जाओ, भर भर के ले जाओ, बोरियां ले आओ, भर के ले जाओ, हम और दे देते हैं। तो नारद ने कहा अरे तुम्हें डर नहीं लगता, भय नहीं है, तुम्हारे चरणों की धूल कृष्ण के सर पर जाएगी, नरक में जाने का डर नहीं है। गोपियों ने कहा अगर कृष्ण का सरदर्द दूर करने के लिए हमें जीवन भर, जीवन के बाद जीवन नरक में पड़ा रहना पड़े तो भी हमें मंजूर है, अगर उससे श्री कृष्ण का सरदर्द दूर होता। ये भक्ति है गोपियों की। तो ऐसी गोपियां आज के दिवस पर कृष्ण को समर्पण करती हैं, सेवा के भाव को दिखलाती हैं। इसलिए जब भी हम गोपियों का स्मरण करें तो हमें वो स्मरण आना चाहिए कि क्या समर्पण है उनका, क्या सेवा है उनकी। उनका 24 घंटे केवल कृष्ण का स्मरण है। एक बार एक गोपी ध्यान कर रही थी बैठे हुए, योगी की तरह बैठी हुई है, बड़े ध्यान में लगी है। दूसरी गोपी ने आकर बुलाई, क्या कर रही हो, हम लोग गोपियां हैं, ये योगी वोगी नहीं है, तुम किस क्यों ध्यान कर रही हो, ध्यान किसका कर रही हो, क्या कृष्ण को ध्यान में लाने का प्रयास कर रही हो? उसने कहा नहीं, मैं ध्यान कर रही हूं कि ये कृष्ण मेरे ध्यान से चला जाए तो मैं कुछ काम करूं। ये गोपियों का स्तर है कि वो ध्यान करती है कि कृष्ण मन से निकल जाए और हम लोग ध्यान करते हैं कि एक क्षण के लिए कृष्ण आ जाए बस मन में, ये हमारी स्थिति है। तो इसलिए गोपियों से सीखना चाहिए कि कैसे हम भगवान की सेवा करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। तो शरद पूर्णिमा का उत्सव जो बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, वृंदावन में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो इस उत्सव में हम भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसी कृपा उन्होंने आज के दिवस पर गोपियों पर की, गोपियों के उदाहरण से हम सबको सिखलाया कि कैसे हमें सेवा करनी चाहिए, हम सब के हृदय में भी ऐसा ही सेवा का भाव हो और आगे आने वाले पूरे महीने में कार्तिक में हम पूरे हृदय से भगवान की सेवा कर सकें। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम भगवान से याचना करते हैं कि वो इतनी शक्ति हमें प्रदान करें कि हम भगवान की कथा को सतत कह सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। और आज के दिवस पर कुछ भजन और कीर्तन होने चाहिए, तो एक भजन गाएंगे और फिर दामोदर अष्टकम का पाठ होगा। एक भजन गा लें, आप सबकी अनुमति हो, समय है थोड़ा बहुत। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करो ये ललिता आदि का सखी गण। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन। बहुत सुंदर भजन है ये, युगल आरती है राधा और कृष्ण की। पेज नंबर 38 पर है, आपको जो बुक्स दी गई हैं उसमें पेज नंबर 38 पर। लाइट कम हो जाए तो अच्छा लगेगा, सारी नहीं ताकि लोग पढ़ सकें, अगर थोड़ी लाइट्स की।
जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, I'm gonna make you mine।